नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव श्लोक संख्या 1, 2, 3 मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान वाच अभियम सत्व संशोधि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम तमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागा शांतिरपेसुनां दया भूते स्वलोलोप्त्वां मार्दवम् रीरचापलम् तेजा क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदं देवी अभिजातस्य भारत। सब लोग ऊंचे स्वरम बोलेंगे। श्री भगवान उवाच अभयम् सत्व संशोधि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शांतिरपेशुन दया भूते स्वलोलुप्त्वां मार्दवम् रीरचापलम् तेजा क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदं देवी अभिजातस्य भारत। अनुवाद आप लोग सुनिए। श्री भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान के अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। आप सब लोग मेरे साथ प्रार्थना बोलिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालें, श्लोकों को समझेंगे। यहाँ भगवान तीन श्लोकों में देवी संपत्ति के 26 गुण बतलाते हैं। तो पिछले कक्षाओं में तीन गुण जो सन्यासी के हैं और तीन गुण जो गृहस्थ के हैं उनका वर्णन हो चुका है। अब आगे प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है उसको हम पढ़ रहे हैं स्वाध्याय से। स्वाध्याय जो गुण है ये ब्रह्मचारी के लिए है। तो ये पेज संख्या 488 में हम स्वाध्याय से पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं स्वाध्याय या वेदाध्ययन ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है। ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए, उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए, यही स्वाध्याय है। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने स्वाध्याय के बारे में जो बताया तो हम जानते हैं। एक श्लोक, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोर्हितम आचरण दासवन नीचो गुरु सुदृढ़ सौहृदहा। कि ब्रह्मचारी गुरुकुल में रह करके और वसंदांतो, दांतो मतलब अपने मन को बस में किए हुए, गुरोर्हितम आचरण करता है अपने गुरु के हित के लिए, दासवन नीचो और नीच दास के समान, गुरु सुदृढ़ सौहृदहा गुरु के प्रति सुदृढ़ सौहार्द स्थापित करके। अब आगे तपस्या का जो गुण है ये वानप्रस्थ लोगों के लिए है। तो प्रभुपाल लिखते हैं तपस या तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए, उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के चार विभाग हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ तथा 25 वर्ष तक संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं अगर 100 साल का जीवन है तो गृहस्थ आश्रम कब तक होना चाहिए, कितने साल तक? कुल 50 साल तक। परंतु आजकल कितने साल का जीवन है आप बताएं, कितने साल का है? 60 साल। तो अगर 60 साल का जीवन है तो फिर हमें 30 साल में ही वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए। व्यक्ति को 30 साल में गृहस्थ आश्रम छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये तो संभव नहीं कि 30 साल में गृहस्थ आश्रम कोई छोड़े। लेकिन मतलब यही है, सिद्धांत यही है कि 30 साल की अवस्था में व्यक्ति को गृहस्थ ये घर की जो जिम्मेदारियां हैं उनको घटाने का प्रयास करना चाहिए और आध्यात्मिक जिम्मेदारियां बढ़ानी चाहिए। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए, यही तपस्या है। समग्र वर्णाश्रम धर्म समाज ही तपस्या के निमित्त है। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। इस सिद्धांत की संस्तुति न तो वैदिक साहित्य में की गई है न भगवद गीता में कि जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है और कोई कल्पनात्मक चिंतन करता रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसा प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं हमें समझना है कि तपस्या की बहुत जरूरी है। जैसे मंगल आरती में उठना है तो कोई व्यक्ति सोचे कि मुझे मंगल आरती में उठने की जरूरत नहीं है, स्नान करने की जरूरत नहीं है, मैं सोते सोते मंगल आरती कर लूंगा, अपने मन से ही मंगल आरती कर लूंगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। तपस्या का मतलब है आप निद्रा छोड़ो, सैया छोड़ो, स्नान करो और मंदिर में आकर के मंगल आरती में भाग लो। तो कल्पना से नहीं होता है कि आप कल्पना से आप कर लेंगे, मानसिक चिंतन से कर लेंगे, नहीं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे सिद्धांत तो उन दिखावटी अध्यात्मवादियों द्वारा बनाए जाते हैं जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना चाहते हैं। हाँ, तो जो दम्भी हैं तो वे क्या कहते हैं कि ठीक है, आपको जीवन में किसी प्रकार के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है, हमारे शिष्य बन जाओ, हमें कुछ आटा है चावल है वो दे दो और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कोई नियम लागू नहीं करते। तो इस तरह से बहुत लोग शिष्य बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उन्होंने किसी प्रकार का समझौता नहीं किया, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, व्यभिचार नहीं, नशा नहीं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यदि प्रतिबंध हो, विधि विधान हो तो लोग इस प्रकार आकर्षित ना हो। अतएव जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं वे केवल दिखावा करते हैं, वे अपने विद्यार्थियों के जीवनों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और न ही अपने जीवन पर, लेकिन वेदों में ऐसी विधि को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। जैसे सहजियां हैं तो वे क्या करते हैं, किसी प्रकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं और सोचते हैं कि कृष्ण प्रेम इतना सस्ता है और वे दिखावा करते हैं कृष्ण के प्रेम का और वे सोचते हैं कि इस प्रकार से उन्हें प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब आगे जो आर्जवम है, ये जो 12 गुण हैं ब्राह्मणों के, तो इनके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। तो सबसे पहले है ब्राह्मणों का जो गुण, सरलता या आर्जवम। तो प्रभुपाद लिखते हैं, जहाँ तक ब्राह्मणों की सरलता यानी आर्जवम का संबंध है, इसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए अपितु चारों आश्रमों के प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए, चाहे वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में हो, मनुष्य को अत्यंत सरल तथा सीधा होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि केवल ब्राह्मणों के ही लिए नहीं है जो सरलता का गुण, बल्कि सब आश्रम, प्रत्येक आश्रम और प्रत्येक वर्ण के लिए ये जरूरी है कि व्यक्ति का हृदय इतना सरल हो, स्वच्छ हो कि जो कुछ भी हृदय में है वो कोमलता से बता दिया जाए। सरलता का उल्टा होता है कुटिलता, तो कुटिलता का बिल्कुल त्याग करना चाहिए, कपट धोखा इसको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। इसके बाद अहिंसा, प्रभुपाद दिखते हैं अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को ना रोकना। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुवध करने में कोई हानि नहीं है। प्रचुर अन्न फल तथा दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने की लत पड़ी हुई है, लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है।
यह आदेश हर एक के लिए है। हाँ, तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, हिंसा का मतलब ये है कि किसी के प्रगतिशील जीवन को आप रोकते हैं। जैसे किसी पशु की आपने हत्या कर दी तो उसको अपने कर्म के अनुसार उस पशु के शरीर में जितने समय तक रहना था उसने आपने समय से पहले ही उसको उस शरीर से निकाल दिया। हाँ, तो फिर उसको कर्म के अनुसार फिर से उसी शरीर में जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार से आपने उसके जो है ना कर्म भोग में बाधा डाली है। तो ये हिंसा है। तो अनावश्यक रूप से किसी पशु पक्षी की हिंसा नहीं करनी चाहिए कि अपनी स्वाद इंद्रिय को तृप्त करने के लिए, जैसे लोग पशुवध करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जब कोई विकल्प ना रहे तभी पशुवध किया जाए, लेकिन इसकी यज्ञ में बलि दी जाए। हाँ, तो जब काली के मंदिर में जब एक पशु की जब बलि दी जाती है तो विधिवत मंत्रों का पाठ किया जाता है, और जो व्यक्ति पशु को काटता है काली मंदिर में काली के सामने और मंत्र उच्चारण पूर्वक, तो उसको फिर महसूस होता है कि पशु को कितना कष्ट हो रहा है। और फिर मंत्रों में जो मानसहा ये शब्द आता है तो ये विशेष रूप से उसको ख्याल कराता है कि जैसे मैं इसको काट रहा हूँ और ये कष्ट का अनुभव कर रहा है, उसी प्रकार से एक ऐसा भी समय आएगा जब ये पशु मुझे काटेगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति उस चेतना में जब पशु की हत्या करता है। लेकिन आजकल लोग जो है कसाई घरों में जो व्यापक संख्या में पशुओं की हत्या करते हैं, है ना, तो ये शास्त्र के अनुसार बिल्कुल गलत है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो तो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक हैं उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो प्रभुपाद ये कहते हैं कि अगर अन्न है, सब्जी है, साग है, ये सब चीजें अगर मिल रही हैं प्रचुर मात्रा में तो ये भी जो ना पशु हत्या नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वास्तविक अहिंसा का अर्थ है कि किसी के प्रगतिशील जीवन को रोका ना जाए। पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरे पशु योनि में देहांतरण करके प्रगति करते हैं। यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों से या वर्षों से रह रहा हो और उसे असमय में ही मार दिया जाए तो उसे पुनः उसी जीवन में वापस आकर 23 दिन पूरे करने के बाद ही दूसरे योनि में जाना पड़ता है। अतएव अपने स्वाद की तुष्टि के लिए किसी की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए, यही अहिंसा है। अब आगे प्रभुपाद जी सत्यम की व्याख्या कर रहे हैं। सत्य क्या है ना, द्रोह। शूद्र के लिए ये गुण है कि द्रोह ना करे, मतलब अपने स्वामी से द्रोह ना करे, है ना, जिसकी सेवा करता है उसे द्रोह ना करे। और फिर नाति मान्यता का मतलब क्या है कि शूद्र को जो है अपने सम्मान की आशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे नीचे होता है, सबसे नीच होता है, इसलिए विनम्र होना चाहिए शूद्र को। तो इस प्रकार से ये 26 गुण जो है भगवान ने बताए हैं कि दैवी संपत्ति है, कि दैवी संपत्ति है। तो 3 श्लोकों में भगवान ने दैवी संपत्ति के 26 गुण बतलाए हैं। और फिर आगे तो पूरा अध्याय क्या है, आसुरी संपत्ति का वर्णन है भगवान ने। फिर आप पूरे अध्याय में आसुरी संपत्ति का वर्णन किया है, असुर लोग कैसे होते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि दोषी में और निर्दोष में क्या अंतर है। दोषी का मतलब है जिसने दोष युक्त कार्य किया है वो दोषी है, और निर्दोष का मतलब है कि जो जिसमें दोष नहीं है, हा? जिस व्यक्ति में दोष नहीं है उसमें आप दोष निकाल रहे हैं तो ये कहलाता है पैशुन, इसको पैशुन बोलते हैं, है ना। तो वो गलत नहीं है, कोई व्यक्ति गलत नहीं है उसको गलत कहना ये गलत, ये तो बहुत गलत है ना। ये जो व्यक्ति गलत है उसको गलत कहना, इसमें कोई गलत नहीं है, है ना। तो हमने इसे बताया कि कोई व्यक्ति जो ना रावण की निंदा करता है तो वो गलत है, तो रावण की निंदा कर दिया। अगर कोई व्यक्ति राम की निंदा करे, है कि नहीं, तो वो तो बहुत गलत है।
लेकिन राम में कोई दोष नहीं है, और राम की अगर कोई निंदा करे तो फिर वो बहुत ही गलत है। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि कहाँ दोष है, जहाँ दोष नहीं है वहाँ पर दोष अगर निकालें तो ये जो है ना असुरों का लक्षण है। जैसे रावण था तो राम की निंदा करता था, राम में कोई दोष नहीं है लेकिन राम के दोष वो हमेशा देखता था, राम के दोषों का वर्णन करता था, है कि नहीं। तो वो चीज जो है गलत है। और कोई प्रश्न किसी का? तो उनका प्रश्न है कि 13वें अध्याय में भगवान ने 20 प्रकार का ज्ञान बतलाया है और यहाँ पर 26 प्रकार के देवी गुण बतलाए हैं भगवान ने। हाँ, कुछ समानता है उसमें। 13वें अध्याय में भगवान ने 20 प्रकार का ज्ञान बतलाया है, और वो 20 प्रकार का जो ज्ञान है तो ये जो है क्रम से कोई व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है। 20 प्रकार का ज्ञान वो क्रमबद्ध जो है भगवान ने बतलाया उसको। और जो देवी संपत्ति है ये भगवान ने संक्षेप में बतलाई है, ये देवी गुण। और फिर आगे चल के भगवान के देवी संपत्ति में मोक्ष है, ये जो देवी गुण है ये व्यक्ति को मुक्त करने में सहायता देते हैं, कर्म बंधन से छूटने में सहायक हैं। और निबंध है आसुरी मता, जो आसुरी गुण है ये बंधन करने में सहायता डालते हैं, कर्म से बांधने में आपकी सहायता करते हैं। अगर आप कर्म बंधन में बंधना चाहते हैं तो आप जो है आसुरी गुणों का अभ्यास करो, और अगर आप जो है कर्म बंधन से छूटना चाहते हैं तो देवी गुणों का अभ्यास करो। अच्छा, तो तेज और क्षमा ये दो चीजें जो भगवान ने कही है, तेज के बाद क्षमा, तो इससे क्या हम समझते हैं, क्या हमें समझना चाहिए? हाँ, खाली क्षमा नहीं, खाली क्षमा कोई मतलब नहीं होता। हाँ, तो चर्चा ये चल रही थी कि खाली क्षमा नहीं है, पहले तेज होना चाहिए इसके बाद फिर क्षमा होनी चाहिए। खाली क्षमा का तो कोई मतलब नहीं होता है ना। जब किसी को तेज दिखाया जाता है इसके बाद फिर क्षमा किया जा सकता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने तेज दिखाया अपना जगह में भाई को, है ना, तब क्षमा किया, है ना। तेज दिखाया अपना चक्र चक्र चक्र, और जब देखा चक्र, ओहो इनके पास तेज है, तब वो जो है घबराए डरे, तब हाँ आगे से अब नहीं करना ऐसा अपराध, ठीक है, तब छोड़ा उनको, तब क्षमा किया। नहीं तो ऐसे क्षमा किया क्षमा किया, क्या क्षमा किया, वो क्षमा मांगता ही नहीं, वो सोचता है इनके पास कोई तेज ही नहीं है, है ना, तो फिर क्षमा का कोई मतलब नहीं होता। तो तेज के साथ ही क्षमा होता है, बिना तेज के क्षमा का कोई मतलब नहीं होता है, है ना। कोई व्यक्ति आपको दो झापड़ मारे, आपको मैंने क्षमा कर दिया, क्या क्षमा कर दिया, आपके पास कुछ है तेज है क्योंकि खाली क्षमा किया, आप डरते हो और कहते क्षमा कर दिया, क्या क्षमा कर दिया, है ना। तो तेज का मतलब है कि पहले शक्ति का प्रदर्शन किया जाए इसके बाद क्षमा। जैसे भगवान राम ने तेज दिख रहा है उस कौवे के ऊपर ना, अपना तेज दिख रहा है उसके बाद क्षमा किया, कुछ क्षमा किया कुछ क्षमा नहीं किया, क्षमा तभी होता है जबकि तेज दिखाया जाए, है ना। हाँ, भगवान कहते हैं कि शुचि नाम श्रीमताम ये है योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट पुरुष जो है पवित्र और धनवान परिवार में जन्म लेता है, अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम, अथवा योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। तो दुर्लभ जन्म और दुर्लभ तर जन्म दो तरह के जन्म है। दुर्लभ जन्म है धनी और पवित्र परिवार में जन्म लेना, ये दुर्लभ जन्म है। और दुर्लभ तर क्या है, योगियों के परिवार में जन्म लेना, ये और ज्यादा दुर्लभ है, है ना। तो कोई व्यक्ति जो है अगर ज्यादा उन्नत है, उसने ज्यादा उन्नति की है कृष्ण भावनामृत में, तो फिर वो सीधे भक्त के परिवार में ही जन्म लेता है। कुछ लोगों में जा सकता है अगर उसके अंदर भौतिक कामनाएं हैं, अगर उसके अंदर कुछ भोगने की इच्छाएं हैं तो उस श्लोक में भी जा सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर भोगने की इच्छाएं नहीं है और उसकी कृष्ण भक्ति में उन्नति करने की इच्छा है तो फिर उच्च लोक में न जा करके और वैष्णव परिवार में ही जन्म लेगा। उच्च लोक है वहां पर खाली भोग है, भक्ति नहीं है, भक्ति भी है तो कोई व्यक्ति जो है अगर जो है इस जीवन में भक्ति का अभ्यास करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे अवसर प्राप्त हो, हमेशा भक्ति का अवसर प्राप्त हो, उसके अंदर कोई भौतिक इच्छाएं भी हैं, तो वो जो है उच्च लोक में जाकर के भी भक्ति कर सकता है और वहां से फिर और आगे उन्नति कर सकता है। ये भी है ना, जैसे प्रभुपाद ने ज्ञानंद को चिट्ठी लिखी, ज्ञानंद का जब देहांत हो गया था तो उनको चिट्ठी लिखी कि तुम या तो भगवान कृष्ण के धाम में चले गए हो, या फिर अगर तुम्हारे अंदर कुछ भौतिक इच्छाएं कुछ शेष बची हों तो तुम उच्च लोकों में गए हो और वहां से फिर तुम जो है कृष्ण के धाम में जा सकते हो, तो अवसर प्राप्त होता है। उच्च लोकों में भी कोई व्यक्ति जाकर के और भक्तों का संग कर सकता है, इसलिए जो भक्त हैं वो हमेशा प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जो है भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो, है ना। तो भगवान जो है अपने भक्तों का संग जो है ना अगर दें तो जो है कहीं भी रहने के लिए भक्त तैयार रहते हैं। उनका प्रश्न है केवल स्वर्ग में ही भोग है और ऊंचे बाकी ऊंचे लोकों में भक्ति है, बाकी ऊंचे लोकों में भी जो है भोग हैं, ब्रह्मलोक में भी जो ना भोग हैं, वहां भी अप्सराएं हैं और वहां पर भी जो है ना और उच्च स्तर का भोग है, स्वर्ग से भी ज्यादा ऊंचे स्तर का भोग है। ऊंचे स्तर का मतलब ये है कि उनमें कुछ जो है आध्यात्मिकता रहती है, कुछ तपस्या रहती है और इंद्रिय संयम भी रहता है उसके साथ साथ, तो वो जो भोग है वो ज्यादा ऊंचे स्तर का माना जाता है, जहाँ की इंद्रिय संयम भी साथ साथ जो है ना बना रहता है। और इस प्रकार से ब्रह्मलोक पर्यंत भोगों की प्राप्ति होती है। देखिए अब गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य हम बताएंगे आप लोगों को, ये पद्म पुराण के उत्तरखंड में जो दिया गया है, और आज विशेष रूप से हमने जो शुरू के 3 श्लोक पढ़े हैं इनका ही विशेष रूप से महात्म्य है। और शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है, वहाँ खड्गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। तो आप समझ रहे हैं कौन राजा थे, खड्गबाहु। और उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता था, उसका नाम था अरिमर्दन। अरिमर्दन एक दिन रात में वो साकलों और लोहे के खम्भों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीबान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान को यानी हथिसार को भी गिरा दिया, ढहा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीबान ही डरे हुए थे, हाथी को तनिक भी डर नहीं था। तो अब क्या हुआ, इस घटना को सुनकर के राजा स्वयं वहां पर आए, और किन के साथ आए, जो हाथी को मनाने की कला में निपुण थे राजकुमार उनके साथ आए। दांत वाला बलवान हाथी वो छोटा हुआ है, नगर के निवासी क्या कर रहे हैं, सब काम धंधों को छोड़कर अपने बच्चों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देख रहे हैं। अब इस समय क्या हुआ, एक ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वे अपने स्वाभाविक तरीके से अपना चल रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी जब विश्व हो रहा है, बम गिर रहे हैं, प्रभुपाद जी अपने निश्चिंत होकर अपना पूजा पाठ कर रहे हैं या प्रसाद खा रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं प्रसाद खा रहा हूँ। तो वो ब्राह्मण प्रभुपाद के समान ही निर्भीक थे, अभय चरणारविंद, प्रभुपाद का नाम अभय चरणारविंद है, तो वो ब्राह्मण भी क्योंकि अभय जो कि श्लोक है गीता का अभयम सतसुंदर, तो अभय से शुरू होता है, इसलिए वो भी निर्भय थे, तो उन्हें कुछ भी चिंता नहीं थी, अपने रास्ते से चल रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि वो गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि 3 श्लोकों का जप कर रहे थे, कैसे, अभियम सत्व संशुद्धिर् ज्ञान योगे व्यवस्थितिः दानम नमस्त यज्ञश्च स्वाध्यायस्य पार्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपेशनम दया भूते सुलो लुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। इस तरह से ब्राह्मण देवता मंत्र पाठ कर रहे हैं। अच्छा, अब जितने पुरवासी और पीलवान थे, जो महावत थे हाथी है, वो बहुत मना करते हैं, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी है? वो तो केवल मंत्र का जाप कर रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं और किसी की बात नहीं सुन रहे हैं और चले जा रहे हैं। उनको हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपनी फुत्कार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छू करके कुशलतापूर्वक निकल गए। उसके माथे को छुआ, मद कहां से बहता है? हाथी के माथे से, गंड स्थल से बहता है, तो वहां से उसको छू करके निकल गए। और देख रहे हैं कौन, राजा और पुरवासी, इतना विस्मय हुआ कि वर्णन नहीं हो सकता है। और राजा के नेत्र कमल चकित हो गए। ब्राह्मण को बुलाया, अपनी सवारी से उतरे राजा साहब, और ब्राह्मण को प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आज आपने ये महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन और किस मंत्र का जप करते हैं, बताइए आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, क्या कहा? राजन, मैं प्रद्युम्न गीता के 16वें अध्याय के इन 3 श्लोकों का जप करता हूँ, इसी से ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। तो फिर शिव जी पार्वती को बता रहे हैं कि तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़ दी राजा ने। अब राजा क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण देवता को साथ लेकर के अपने महल में आ गए। वहाँ शुभ मुहूर्त में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर के उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। गीता के 16वें अध्याय के अभियम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथी मानव से उसी मत्त गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य के सुख विलास के प्रति उनका आदर का भाव नहीं रहा, क्योंकि इसमें वो भी बताया त्याग शांति, तो ये जो है ना सब गुण राजा में विकसित हो गए। 26 के 26 गुण राजा में विकसित हो गए, उसमें त्याग शांति सब कुछ है, निर्भयता। तो ये अपने जीवन को तिनके के समान समझ करके हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्य में अग्रगण्य राजा खड्गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मत की धारा बहाते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। इस प्रकार से राजा गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अब क्या किया, अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति प्राप्त की। इस प्रकार से हमने सुना कि भगवद गीता के श्लोकों में कितनी मंत्र शक्ति है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के जगत गुरु शिला प्रभुपाद की श्री श्री राधा पार्षदी ललिता विशाखा की श्री श्री गोणताय भगवान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।